मेरे अत्यंत आत्मीय युवा साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्नेह। आज मैं पहली बार आप सबके लिए स्नेह शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मुझे लगा कि ठीक है, कुछ नए संबोधन भी इजाद किए जाने चाहिए। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। मित्रों, आज 14 सितंबर 2017 है, हिंदी दिवस है, और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आप सबके साथ ही फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन 5 नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं भारती पांडुरंग लावते, भरूच गुजरात से मैक्स सन्नी, आप हैं चंदनपुरा जमालपुर बिहार से कमलेंद्र श्रीवास्तव कोरबा छत्तीसगढ़ से, विजय कुमार वर्मा न्यू दिल्ली से, और प्रज्ञा पांडे बलिया से। भारती, मैक्स, कमलेंद्र, विजय और प्रज्ञा, आप सभी 5 साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के मुख्य विषय के रूप में मैंने थोड़ा हार्ड कोर सब्जेक्ट से हटकर बात करने का फैसला किया है। हार्ड कोर सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि जो डेली जो घटनाएं घटती हैं, जो खासकर जो करंट में घटती हैं, 1-2 दिन पहले की जो घटना होती है, उसी के बैकग्राउंड और एनालिसिस और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी इम्पोर्टेंस, इन सब पर मैं बात करता था। लेकिन आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा टेस्ट बदला जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं जो हमारे लिए कुछ फायदेमंद ही न हो। तो आज मैंने जो विषय चुना है, आज मैं आपसे बात करूंगा कि जीके होता क्या है, है ना, जनरल स्टडीज आप कह लीजिए या जनरल नॉलेज कह लीजिए, कि ये बेसिकली होता क्या है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मैंने इस विषय का विश्लेषण करने का जो निश्चय किया है, उसके केंद्र में होगा मित्रों, कौन बनेगा करोड़पति। और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि आप सब जो डेली ऑडियो लेक्चर सुनते हैं, शायद कभी न कभी आपने अभी जो शुरू हुआ है या इससे पहले भी कौन बनेगा करोड़पति देखा ही होगा, ये मैं मानकर चलता हूं। तो मित्रों, मैं उसको आधार बनाकर आज आपसे जनरल स्टडीज के बारे में कुछ बातें करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी न्यूज की छोटी मोटी जो बातें हैं उनके आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, जहां तक टॉपिक की बात हम करें तो आज ऐसा कोई विशेष टॉपिक नहीं है, इनफैक्ट जिसकी तरफ मैं इशारा करके आपको बता सकूं कि ये आपको तैयार करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं होता है कि न्यूज में फिर कुछ है ही नहीं। दरअसल यही सजगता की जरूरत होती है, यही आपके उस फोकस माइंड की जरूरत होती है या उस अंतर्दृष्टि की जरूरत होती है कि टॉपिक तो नहीं है लेकिन कैसे आप अपने लिए उसमें से कंटेंट निकाल सकें, तत्व निकाल सकें, भले वो एक लाइन का हो, एक ही शब्द क्यों ना हो। और वो जो कंटेंट होते हैं अपने आप में कंप्लीट भी होते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि आपको अपडेट भी करते रहते हैं। और सिविल सर्विस का, खासकर जो जनरल स्टडीज का जो पार्ट है, पोर्शन है मित्रों, वो आपसे बहुत ज्यादा अपडेट की डिमांड करता है कि आप कितने अपडेटेड हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब पुरानी चीजें हो सकता है कि 10 दिन पहले वो नई थी, लेकिन अगर 10 दिन बाद कोई उसे रिप्लेस करने वाला फैक्ट आ गया है तो समझ लीजिए कि वो 10 दिन पहले की ही क्यों ना हो। वैसे तो सुनने में लगता है कि 10 दिन ही तो हुए हैं, लेकिन वो पुरानी हो चुकी है। और इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में जो अभी हो रहा है, जो दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है या बदल रही है, उसमें आपको डेफिनेटली थोड़ा सा इस मामले में सतर्क रहना पड़ेगा। तो जब आप न्यूज सुनते हैं तो ध्यान रखिए कि उस न्यूज में क्या कोई नई बात कही गई है, और खासकर केवल आपको उन तथ्यों का ही ध्यान रखना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, जो सिविल सर्विस से संबंधित हैं। बाकी सारी चीजों के लिए आपको नहीं लेना है कि सभी चीज आप बटोर कर चल रहे हैं, फिर तो बेकार के दिमाग में दुनिया भर की फालतू की चीजों का जमावड़ा लग जाएगा, और सच पूछिए तो वो तो फायदा देने की जगह नुकसान दे जाएगा। जैसे कि आप भूख लगी है तो ठीक है, थोड़ा बहुत खाइए तो एनर्जी आ जाएगी जितनी जरूरत है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा हमने खा लिया, भकोस लिया जिसे कहा जाता है, तब तो पता लगा कि पेट दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो रही है, मतलब उल्टा मामला हो गया। तो मित्रों, इस तरह के कुछ मैं आपको अपडेट करने वाले या उस तरह के कंटेंट आज बताने जा रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि आपने न्यूज तो सुनी ही होगी और आपका भी ध्यान उन बातों की तरफ गया होगा। खासकर तब तो गया ही होगा अगर आप एटलीस्ट 6 महीने से इस डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे तो, क्योंकि इतनी मेच्योरिटी तो फिर आ ही जाती है। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्री के लिहाज से भी, मेंस के लिहाज से भी। मेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आप मेंस में थर्ड पेपर जनरल स्टडीज का उठा करके देखिए मेंस का, तो उसमें इंक्लूसिव ग्रोथ अलग से मेंशन किया हुआ है, पॉइंट के रूप में मेंशन किया हुआ है। मतलब इंक्लूजन जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन जिसे हम समावेशी विकास, समावेशी विकास अलग से उसमें दिया हुआ है। और ये प्रधानमंत्री जनधन योजना और समावेशी विकास का बहुत बड़ा मेरुदंड है कह लीजिए, तो इसके बारे में तो आपको अपडेट रहना ही चाहिए। तो आप देखें कि न्यूज में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आया है कि अब हमारे पास केवल 20% खाते ऐसे हैं, केवल 20% 20% खाते ऐसे हो गए, रह गए हैं जो कह लीजिए कि जीरो बैलेंस वाले हैं। जीरो बैलेंस वाले हैं कहने का मतलब है कि जिसमें कोई पैसा नहीं है, जबकि कुछ समय पहले तक ऐसे खातों की संख्या 77% थी। आपको ध्यान होगा फ्रेंड्स कि जब जनधन खाते खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, तो दुनिया भर के खाते खोले गए, बैंकों को टारगेट दिया गया, तो लगभग ये माना जाता है कि सबके खाते खुल ही गए होंगे, क्योंकि वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा कि 30 करोड़ खाते खोले गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। 30 करोड़, 130 करोड़ की आबादी है, एक परिवार में 4-5 लोग अगर मान ले तो आप कह लीजिए कि हर परिवार का खाता हो गया है, सामान्य तौर पर कि हर परिवार का खाता खुल चुका है। तो 30 करोड़ खाते खोले गए, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसमें फिर ये अमित शाह उस समय आलोचना भी हो रही थी कि जबरदस्ती खोले गए हैं, हैंडल नहीं हो रहा है, उसमें तो पैसे ही नहीं है, फलाने फलाने बात हो रही थी। तो उस समय लोगों ने जो भी खाते खोले उसको ऑपरेट करना शुरू नहीं किया है, उसमें काम करना शुरू नहीं किया, तो लगभग 77% खाते ऐसे थे जिसमें जीरो बैलेंस था, कोई पैसा नहीं था। अब वो घटकर 20% पर आ गया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसका मतलब है कि लोगों ने इस बीच में उन खातों का उपयोग करना शुरू कर दिया, उसमें पैसा जमा करना शुरू कर दिया, निकालना डालना शुरू कर दिया ना, तो उनका हो गया समावेशी, समावेश हो गया, वो मेन स्ट्रीम में आ गए फाइनेंशियल दुनिया के, हमारे राष्ट्र की जो आर्थिक मुख्य धारा है कम से कम उसमें आ तो गए। तो अब उनको खाता खोलना, पैसा जमा करना, निकालना, ये सब आदत धीरे धीरे पड़ती जाएगी, तो डेफिनेटली इसका सकारात्मक प्रभाव तो अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये आंकड़े हैं जो आपको अपडेट करना है। इसके बाद आपने न्यूज में ही सुना कि हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात कही कि हम अपनी जरूरत का 80% पेट्रोलियम विदेशों से आयात करते हैं, 80%। जब भी आप अखबार में पढ़ेंगे, मैगजीन्स में पढ़ेंगे, तो आप देखिए कि इसके बारे में ना वेरिएशंस आते रहते हैं, वो 70-80 के आसपास रहता है, किसी में आपको 70% आयात करते हैं कि कोई 75% लिख देता है, कोई 80% लिख देता है, लेकिन चलिए एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मिनिस्टर ने कहा है अगर 80% तो अब आपके दिमाग में आंकड़ा होना चाहिए कि 80% आयात करते हैं पेट्रोलियम का। सोचिए कि जब हम 80% पेट्रोलियम अपनी जरूरत का आयात करते हैं तो उसके लिए हम कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करते होंगे। हमारी विदेशी मुद्रा का जो कोष होता है सबसे बड़ा हिस्सा तो पेट्रोलियम पदार्थों के लिए ही चला जाता है और उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो ये एक बहुत अच्छा ये आंकड़ा है। इसके बाद देखिए एक फैक्ट, देखिए एक और आंकड़ा हमारे पास आया फैक्ट के फॉर्म में, और वो ये है कि आधार के तहत जो भी हम अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप देख रहे हैं कि उसको लेकर के एक बहुत विवाद की स्थिति बनी है, उसकी प्राइवेसी को लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर के, इसकी सुरक्षा क्या है, उसके बारे में जो स्टेटमेंट आया है वो ये स्टेटमेंट आया है कि ये पूरी तरह सुरक्षित है। जो आधार के तहत जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कूट भाषा में रखा जा रहा है। मतलब अगर मेरा नाम डॉक्टर विजय अग्रवाल है तो वो उसी रूप में वहां अवेलेबल नहीं है, वो कोड में है। अब वो कोड को जो डिकोड कर सकेगा वो उसको समझ पाएगा, तो कूट भाषा में रखा गया है, मतलब वो डायरेक्ट उस लैंग्वेज में नहीं है। तो कूट भाषा के कोड होते हैं अलग से, मतलब वो ताले में बंद है, आप कह लीजिए भाषाई ताले में बंद है, उसकी चाबी लोगों के पास नहीं है। तो उन्होंने एश्योर किया है कि ये जो आंकड़े हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये सरकार की तरफ से एश्योरेंस दिया गया कि कूट भाषा में है, तो मित्रों न्यूज में इतना ही था। फिर आपने दूरदर्शन न्यूज में देखा कि खासकर अभी जो जापान के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर आए हैं, बहुत बड़ा कवरेज उसमें था। प्राइवेट चैनल्स में भी वो कवरेज था। आज बैठक होगी, महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, फिर अखबारों में आएगा। तो हम जापान के साथ और भारत के रिश्तों में जो तब्दीलियां आएंगी, जो समीक्षा होगी, उस पर आगे चलकर बातें करेंगे। मित्रों आइए, मैं अब कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से जनरल स्टडीज क्या है इसके बारे में कुछ बातें करता हूं। एग्जैक्ट मुझे दिन तो याद नहीं है, लेकिन लगभग एक सप्ताह पहले की बात है, पिछले सप्ताह की बात होगी। मैं कभी कभार देख लेता हूं मित्रों, हाँ मेरी पत्नी देखती है, उनको बहुत मजा आता है कौन बनेगा करोड़पति में। जो लोग आते हैं, जो बातचीत होती है, संवाद होती है, उसको बहुत एंजॉय करती है, मैं भी एंजॉय करता हूं, ऐसा नहीं है। मित्रों उसमें एक बहुत अच्छी बात अमिताभ बच्चन जी ने कही थी। उन्होंने कहा था कि मुझसे लोग पूछते हैं कि भाई हम कौन बनेगा करोड़पति में आना चाहते हैं, तो हम अपना जनरल नॉलेज कैसे अच्छा करें। देखिए वहां नॉलेज शब्द ही चलता है, जनरल स्टडीज तो ये सिविल सर्विस में आया है ना, तो हम अपना जनरल नॉलेज कैसे अच्छा करें। तो उन्होंने बड़ी मजेदार बात कही और बड़ी मौजू बात भी कही। उन्होंने कहा कि देखिए जनरल स्टडीज के लिए कुछ नहीं, आप अपने आसपास को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सतर्क रहिए, जनरल स्टडीज तैयार हो जाएगा, जनरल नॉलेज तैयार हो जाएगा। ये बात उन्होंने कही, आप अपने आसपास के प्रति थोड़े से सजग रहिए, थोड़े से सतर्क रहिए। और मित्रों सच पूछिए तो जो आपके सिविल सर्विस में जो जनरल स्टडीज है, चाहे वो प्री के हों या मेन्स के हों, वो अपने आसपास के प्रति सजग रहने से ही तैयार हो जाएगी। अब देखिए कि जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, अपने आसपास के प्रति सजग रहिए, तो अब सवाल यह है कि इस आसपास को आप क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं गांव में रह रहा हूं, तो क्या मेरा गांव मेरा आसपास है? मैं एक शहर में रह रहा हूं, तो क्या मेरा शहर मेरा आसपास है? मैं अगर एक कंपनी में नौकरी कर रहा हूं, तो क्या वो कंपनी मेरा आसपास है? इस आसपास को समझना होगा। आसपास का मतलब है कि आप जिस दुनिया में रह रहे हैं, उस दुनिया की व्यावहारिक चीजों को आप देखिए, जानिए, वो आपका आसपास है। आसपास का संबंध भौगोलिक दूरियों से नहीं है, आसपास का संबंध जो बौद्धिक, जो पूरा का पूरा जो वातावरण है उससे है। हमारे राज्य में, हमारे देश में, पूरी दुनिया में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, किस तरह की चीजें हो रही हैं, उनको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, जनरल नॉलेज आपका तैयार हो जाएगा। तो यहां आसपास शब्द को आपको समझना होगा, यानी ये भौगोलिक स्थितियों को इंडिकेट नहीं कर रहा, ये घटनाओं को इंडिकेट कर रहा है। अब सवाल ये है कि आप इनके प्रति सतर्क रहेंगे कैसे, क्योंकि हमें दिखाई तो दे नहीं रहे हैं। अहमदाबाद में अगर भारत और जापान के प्रधानमंत्री के बीच कुछ होगा तो हमें थोड़ी दिखाई दे रहा है, तो अब हम कैसे सतर्क रहे? तो वो कहना ये चाह रहे हैं इनडायरेक्ट में, देखिए जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये आएगा कि कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, इन सब का जो खजाना होते हैं वो समाचार होते हैं, चाहे वो रेडियो समाचार हो, चाहे दूरदर्शन के समाचार हो, चाहे अखबार हो। उसमें यही तो होता है ना कि पूरी दुनिया में क्या हुआ, जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनको वो संग्रहित करके रोजाना हमारी थाली में परोस देते हैं, ज्ञान की थाली में परोस देते हैं। अब सवाल यह है कि आप उसे खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। थाली तो है, लेकिन थाली होने से क्या होगा जब तक मैं उससे कौर बना करके अपने मुंह में नहीं डालूंगा। मित्रों मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आपने कल परसों दो दिन के कौन बनेगा करोड़पति देखे हो तो थोड़ा सा आप देखिए कि कैसे चूक होती है। कल एक व्यक्ति नौजवान थे, वो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठे हुए थे और उन्होंने कई सब्जेक्ट में एमए किया हुआ है, दो तीन सब्जेक्ट में तो एमए किया हुआ है और उन्होंने बताया कि इन इन सब्जेक्ट में मैंने एमए किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है। वो एक प्रश्न में फंस गए और प्रश्न क्या था आप देखिए, कितना सिंपल सा प्रश्न था कि जो जनता दल में जो यू है, जनता दल यू होता है ना, तो इसमें जो यू शब्द है, ये यू शब्द किसको इंडिकेट करता है? जेडीयू, ये पार्टी है, जेडीयू, यू इन ब्रैकेट होता है, वो नहीं बता पाए, राइट। मेरे लिए बड़े आश्चर्य का विषय था इस रूप में कि उन्होंने कई सब्जेक्ट से एमए किया है, यंग है, शहर में रह रहे हैं और साफ इसका मतलब है कि उनका अखबारों से कोई नाता नहीं है, उनका न्यूज से भी कोई नाता नहीं है। क्योंकि जनता यू यूनाइटेड ये शब्द इतना ज्यादा अभी खासकर नीतीश कुमार जी जब भारतीय जनता पार्टी में मिलने की बात हुई, उनमें जो विभाजन हुआ, लालू यादव से अलग हुए, फिर शरद यादव अभी लगातार उस मामले को उठाते चले जा रहे हैं, तो अखबारों में रोज जेडीयू आ रहा है। एक ऐसा नहीं कि एक दो बार आकर के खत्म हुआ, लगातार आ रहा है। तो अगर कोई भी जरा भी सतर्कता से अखबार पढ़ रहा है, न्यूज सुन रहा है, तो उसके लिए बहुत ही आसान सी बात है। इससे पहले ही एक और प्रतियोगी आई थी, वो महिला थी और उनके चेहरे मोरे से साफ लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा विदुषी महिला नहीं है, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्रश्नों के उत्तर दिए वो अद्भुत थे, विलक्षण थे। मतलब कॉमन सेंस के आधार पर जो उन्होंने बातें कही, और वो 3,20,000 कुछ वो जीत करके भी या 6,00,000 जीत करके गई, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा, 3,20,000 से तो अधिक जीत करके गई वो। अब वो देखिए एक विषय में एक उस पर फंसी, वो फंसी इसमें मेरी चिंता नहीं है। उन्होंने जब अपनी लाइफलाइन ली तो लाइफलाइन एक ऐसे लड़के से कनेक्ट किया गया जो दिल्ली में रह रहा है और यंग है, मुश्किल से 25-27 साल का लड़का है, वो यंग है और दिल्ली में रह रहा है, और डेफिनेटली मुझे ये नहीं मालूम है कि नौकरी कर रहे होंगे वो या पढ़ाई कर रहे होंगे या हो सकता है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, आई डोंट नो। प्रश्न सिंपल सा था, प्रश्न ये था कि निम्न में से कौन पहली बार लोकसभा के सदस्य बने। चार ऑप्शन थे, राहुल गांधी जी का था, उसमें हमारे मोदी जी का था, दो और कौन से ऑप्शन थे मुझे नहीं मालूम। वो स्टूडेंट या वो यंग फ्रेंड जवाब नहीं दे पाए, नहीं जवाब दे पाए, मामला खत्म हो गया। चलिए ये महिला जवाब नहीं दे पाई, मेरी बात उन समझ में आती है, क्योंकि महिलाओं जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनकी अपनी एक जीवन पद्धति अलग होती है, तो वो अपने काम में लगी हैं तो अखबार नहीं पढ़ पाती होंगी या जो भी है उनके बारे में, तो बिल्कुल वो कह लीजिए कि क्षमा के योग्य हैं, मतलब क्षमा कहना ही नहीं चाहिए, कोई गलती ही नहीं है कि आप क्षमा के योग्य माने। लेकिन मेरी चिंता इस यंग लड़के से है जो दिल्ली में जैसे महानगर में रह रहे हैं और यंग है। बहुत सिंपल सी चीज थी कि जो प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर है, इससे पहले वो अपना अलग तरह का काम करते थे, संघ से जुड़े हुए थे तो उसके काम में लगे हुए थे, हम सब इस बायोडाटा को जानते हैं, राइट। तो पहली बार वो प्रधानमंत्री बने तो सीधी सी बात है कि वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने होंगे, इससे पहले तो ऐसा नहीं कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हों। ये मतलब केवल कॉमन सेंस की बात है, और अगर कोई अखबार पढ़ रहा है, न्यूज से जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए यह प्रश्न बाएं हाथ का होगा, अदरवाइज तो उनके लिए तो सीधे सीधे दिमाग का भी प्रश्न नहीं रहा, क्विट हो गया। तो दोस्तों मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं वो केवल ये कि याद रखिए कि अगर आप अपने समय के प्रति सतर्क हैं तो आपकी जनरल स्टडीज तैयार हो रही है, और खासकर अब जो सिविल सर्विस का पैटर्न हो गया है वो तो ऐसा ही हो गया है। डेफिनेटली अगर इतिहास के प्रश्न पूछे जाएंगे तो इतिहास के प्रश्नों के जवाब आप अभी की सतर्कता से नहीं दे सकते, लेकिन हम मानकर चलते हैं कि जो लड़का सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, मानकर क्या चले, वो तो नियम ही है कि ग्रेजुएट तो है, तो एक स्नातक कहलाने का मुझे सही अधिकार तभी होता है जब जो मूलभूत विषय है उनके बारे में मेरी जानकारी है, फिर चाहे मैं साइंस का भी स्टूडेंट क्यों ना रहूं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं इंजीनियर हूं और मैं डॉक्टर हूं तो इस बात की मुझे छूट है कि अगर मैं हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा हूं, ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं जान रहा हूं तो मेरा कोई दोष नहीं क्योंकि मैं इंजीनियर हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। नो, इंजीनियर डॉक्टर मैं बाद में बना हूं, 10th तक तो मैं सामान्य विद्यार्थी ही था और उस सामान्य विद्यार्थी के रूप में मैंने ये सारे विषय पढ़े हैं। अब मैं भूल क्यों गया हूं, और अगर चलिए मैं भूल भी गया हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं स्नातक हुआ हूं तो इन विषयों से लगातार थोड़ा बहुत जुड़ा रहूं और जो अखबार और न्यूज हैं मुझे जोड़ने का काम करते हैं। और अगर मैं भूल गया हूं, मैं जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं अखबार और न्यूज से भी अलग हो चुका हूं। मित्रों, जिस दिन यह भाव मन के अंदर आ जाएगा, जिसके भी आ जाएगा, उसके लिए जनरल स्टडीज मुश्किल काम नहीं रह जाएगा, थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। तो दोस्तों इस विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको उपलब्ध कराई जा रही हैं, देख लीजिएगा। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं: पी रामबोल, दीपक कुमार छपरा बिहार से, सुधांशु तिवारी, भवानी सिंह, आदित्य सिंह, राहुल कुमार जायसवाल वाराणसी उत्तर प्रदेश से, राजा अग्रवाल, दीपशिखा चौहान, अंकित सिंह, भरत राज पुरोहित, वंदना मौर्य बलिया उत्तर प्रदेश से, उम्मेद राज पुरोहित जयपुर राजस्थान से, कुमार विकास और केसी अरुण। आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करने की आप सबसे विनम्र अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।